તારીખ 21/9/1991 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા હૈદરાબાદમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 39 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
એને નિવૃત્ત થવું અને વિચારવાન જીવને તો એ જ બુદ્ધિ રહે છે. એનો અભિપ્રાય તો નિવૃત્ત થવાનો જ હોય વિચારવાન જીવનો. તો તથાપિ કોઈ પ્રારબ્ધવશાત પરભાવનો પરિચય બળવાનપણે ઉદયમાં હોય, શું છે કે પૂર્વકર્મને કારણે કોઈ પ્રવૃત્તિમાં બળવાનપણે જોડાવવું પડે એવું એવી પરિસ્થિતિ હોય, ત્યાં નિજપદ બુદ્ધિમાં સ્થિર રહેવું વિકટ છે. અને ત્યાં પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં, નિજપદ એટલે નિજ સ્વરૂપમાં સ્વરૂપપણે રહેવું, એ સ્વરૂપ ભાવમાં રહેવું વિકટ છે. એમ ગણી નિત્ય નિવૃત્ત બુદ્ધિની વિશેષ ભાવના કરવી એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે. તો મહાપુરુષોને એસે બોધ દિયા હૈ, ઉપદેશ દિયા હૈ કે નિત્ય પ્રતિ નિવૃત્તિ હોને કી બુદ્ધિ, નિવૃત્તિ કા અભિપ્રાય કી ભાવના ભાવના બાર બાર હોની ચાહીએ. કેસે મેં મુક્ત હું, નિવૃત્ત હો જાઓ. અલ્પકાલ મેં અવ્યાબાધ સ્થિતિ હોને કે લીએ તો અત્યંત અત્યંત પુરુષાર્થ કરકે જીવ જીવ પર પરિચય છે, જીવ કો પર પરિચય છે, નિવૃત્ત નિવર્તવા નિવર્ત નહીં ચાહીએ. જિસકો અવ્યાબાધ સ્થિતિ મેને મોક્ષ કી પ્રાપ્તિ કરની હૈ ઉસકો તો પ્રવૃત્તિ છોડની ચાહીએ. આહિસ્તે આહિસ્તે નિવૃત્ત હોને કા કારણ પર વજન દેને કે બજાય જિસ પ્રકાર સે ત્વરા સે નિવૃત્તિ હોવે વહી વિચાર કર્તવ્ય હૈ. ક્યા હોતા હૈ કે પ્રવૃત્તિ વાલે કો એસા વિચાર આતા હૈ કે આસ્તે આસ્તે અપન કમ કરતે જાયેંગે, થોડા થોડા કમ કરકે ફિર નિવૃત્ત હો જાયેંગે. તો ઇસ વિચાર પર જોર નહીં રખના, લેકિન શીઘ્ર નિવૃત્ત નિવૃત્તિ મિલે એસા હી વિચાર કરને લાયક હૈ. ઓર એસે કરને સે ઇસ પ્રકાર સે કરને સે અશાતાદિ આપત્તિ યોગ વેદવા પડતા હોવે, મેને પ્રતિકૂળતા આ જાય, એસે જલ્દી નિવૃત્તિ લેને મેં કદાપિ પ્રતિકૂળતા આ જાય તો ઉસકો ઉસકો ઉસ પ્રતિકૂળતા કો સહન કરકે ભી વેદીને મેને ઉસકો સહન કરકે ભી પર પરિચય સે શીઘ્રપણે દૂર હોને કા પ્રકાર કરના યોગ્ય હૈ. ફિર ભી નિવૃત્તિ તો લેની હી ચાહીએ, યે બાત વિસ્મરણ હોને દેને યોગ્ય નહીં હૈ. ઇસ બાત કા વિસ્મરણ નહીં કરના ચાહીએ. ક્યા હૈ જો 27 વર્ષ કા સાલ મેં યે પત્ર લિખા હૈ 27 કે સાલ, તો ઉનકો નિવૃત્તિ કી ભાવના બહોત જોર કરતી થી સ્વયં કો. શ્રીમદજી કરીબ 21 સાલ સે ધંધામાં પ્રવેશ કિયા, ભાગીદારીમાં બંબઈમાં ચાલુ કિયા ધંધા, ઓર ચલતે બિઝનેસમાં ચલતી પ્રવૃત્તિમાં ઉનકો સમ્યક દર્શન આદિ કી પ્રાપ્તિ હુઈ 24 સાલ કી ઉંમરમાં. તો ઉસકે પહેલે હી વૈરાગ્ય બહોત બઢ ગયા થા ઉનકા, બાદ હી સમ્યક દર્શન હુઆ હૈ. और समय दर्शन होने के बाद उनको तो ऐसा लगा कि अभी तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए. तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो ये प्रवृत्ति व्यापार वगैरह की चीज नहीं है. तो फिर वो एकदम निवृत्त होने की भावना में बहुत आए हैं. तो 25-24 की साल में सम्यक दर्शन हुआ, 25 की साल में तो उसको ऐसा लगा है कि मैं कब ये व्यापार धंधा छोड़ दूं. 25-26-27 के साल में देखो इसका विचार कि आहिस्ते आहिस्ते प्रवृत्ति कम करना ये बात हमको तो बराबर नहीं लगती है, भले ही प्रतिकूलता आ जाए एकदम शीघ्र छोड़ना है. फिर भी वो छोड़ नहीं पाए 27 वर्ष में. 28 वर्ष के बाद उन्होंने अपने पार्टनर को, भागीदार को बोल दिया कि मुझे तो अभी व्यवसाय में नहीं रहना है, अब मेरा भाग निकाल दो। और धंधा की परिस्थिति बहुत अच्छी थी, काफी वो लोग कमाते थे उन जमाने में। बोले कि कोई आप लोगों को तकलीफ तो होने वाली है नहीं, सब धंधा का तो व्यवस्था अच्छा बैठ गया है, मुझे तो नहीं रखो, मुझे छोड़ दो। तो फिर उन लोगों ने वो सम्मत नहीं किया। तो ऐसा बोला कि आपको निवृत्ति ज़्यादा चाहिए तो आप बार बार निवृत्ति में चले जाइए, कोई बात तकलीफ नहीं है, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे तो नहीं। भागीदारी छोड़ा नहीं, तो वो वहाँ से थोड़ा प्रवृत्ति कम किया है। फिर भी 30 साल की उम्र में तो उन्होंने भागीदारी छोड़ दिया कि अब तो मेरा थोड़ा बहुत आना जाना भी मुझे तो बहुत बोझा लगता है, मैं तो निवृत्ति में चला जाऊंगा। 30 साल से वो निवृत्त हो गए थे। आज 30 साल की उम्र में तो चालू होता है काम, 30 साल की उम्र में निवृत्त हो गए थे, लेकिन उनके 5-6 साल से बहुत निवृत्ति का विचार आया। जब वो 5-6 साल के बाद निवृत्त हुए, ऐसा होता है। पूर्व कर्म के अनुसार होती, लेकिन ऐसे करने पर यदि लोगों को तो ऐसा लगे ना कि प्रवृत्ति आमदनी थी, अच्छी आवक थी, वो तो छोड़ दिया, तो निवृत्ति लेकर बैठे तो उनको अनुकूलता नहीं हो रही है, लोग ऐसा मानते हैं, वो तो उनको तो समाधान रहता है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। ये तो दूसरे मुमुक्षु को लिखा है ना, इसलिए ऐसा लिखा है कि ऐसा भय होए आपत्ति का तो कोई भय रखने की जरूरत नहीं। ऐसा तो नहीं लिख અમે તો બધું નોંધ કરેલી છે, નથી નિમિત્ત નૈમિત સંબંધ ને ધર્મ કહે છે, ધર્મ કહે છે, અને કર્તા કર્મ તો શક્તિ છે, એની પ્રોપર્ટી છે। ધર્મમાં અને ગુણમાં ફરક છે, ગુણ છે એ દ્રવ્ય ની શક્તિ છે, ત્રિકાલી શક્તિ। ધર્મ તો પર્યાય કો ભી હોતા હૈ, ગુણ કો ભી અપના હોતા હૈ, ઓર દ્રવ્ય કો ભી અપના હોતા હૈ। પર્યાય ઓર ગુણ કો ભી નિમિત નૈમિત સંબંધ હોતા હૈ, ઓર કર્તા કર્મ ભી સંબંધ હોતા હૈ, દોનો ભી ગુણ ભી હોતા હૈ, ઓર ધર્મ ભી હોતા હૈ, ઓર અપને અપને ધર્મ ભી હોતા હૈ। और गुण तो द्रव्य को ही होता है, न गुण को गुण होता है, न पर्याय को गुण होता है, धर्म तीनों को होता है। गुरुदेव को भावनगर आए थे, पूछा था कि ज्ञान उपयोग है, ज्ञान का परिणाम को उपयोग कहते हैं और ज्ञान गुण ध्रुव है। ज्ञान शक्ति कैसी है? त्रिकाल ध्रुव है। तो फिर ये ज्ञान शक्ति और ज्ञान उपयोग के बीच में क्या संबंध है, पूछा, प्रश्न किया था, मैंने प्रश्न किया था। गुरुदेव ने ये बोला कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक। क्या संबंध, कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कि ज्ञान उपयोग जानता है, तो ज्ञान उपयोग जानता है वो उपादान है, और उपादान में जो भी जानने में आता है वो उसका निमित्त है। तो ज्ञान शक्ति को जाना, ज्ञान उपयोग ने ज्ञान शक्ति को जाना, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। प्रश्न तो उतना ही था कि ज्ञान उपयोग और ज्ञान शक्ति आपस में किस प्रकार का संबंध है, तो उतना प्रश्न था। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा बोले। कभी दोनों बाजू होता है, कभी एक बाजू भी हो सकता है। इसलिए तो अन्य मत वाले को समझ में नहीं बात आती, वो लोग बुद्धिमान तो होते ही है लेकिन बात समझ नहीं सकते। वस्तु भी थोड़ी विचित्र है और इसका विज्ञान जो है वो सही दृष्टिकोण से नहीं समझे तो चक्कर में पड़ जाता है। हाँ डाल देना। कोरी पाठी होकर बैठना वो अच्छा है, क्योंकि पूर्वग्रह है उससे बात सही रूप में समझ में नहीं आते, तो पूर्वग्रह को तो छोड़ देना। तो अंदर में निमित्त निमित्तिक संबंध गुण गुण के बीच में भी होता है। जैसे ज्ञान से सोतान हुआ तो दो गुण के बीच में निमित्त निमित्तिक संबंध हो गया। ज्ञान हुआ तो पुरुषार्थ उत्पन्न हुआ या सुख हुआ ज्ञान के कारण, तो निमित्त निमित्तिक संबंध हो गया ना। ब्रह्मा तो तादात्म्यपणे में एक गुण दूसरा गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य की सत्ता के हिसाब से कहने में आता है। हम्म, एकदम एकाकार सुख नो अनुभव थाय छे। जे स्वानुभव ना काल में सुख नो अनुभव थाय छे तो ज्ञान ने तो स्वयं नो अनुभव थाय छे, और उस सुख गुण भी सुख रूप परिणमता है, वो भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। और भेद विकल्प तो वहां है नहीं, ये ज्ञान है ये सुख है ऐसा तो है नहीं। और द्रव की एक सत्ता है, जैसे भगवान ने कहा जो तादात्म्य संबंध है ऐसा, तो तादात्म्य संबंध है इसलिए ऐसा भेद नहीं रहता कि ये ज्ञान है ये सुख है, ऐसा भेद नहीं पड़ता। आत्मभाव से वो सुख का अनुभव होता है और आत्मभाव से ज्ञान का अनुभव होता है। हाँ वैसे ज्ञान में तो जो भी सामने आएगा उसका प्रतिबिंब तो होगा ही होगा, चाहे स्व हो चाहे पर हो। लेकिन संसार में दशा में तो पर पदार्थ को जानते हुए अवलंबन ले लेता है तो रागादि भाव की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ तो अंदर में अपना स्वरूप का अवलंबन लिया हुआ है तो पर्याय जैसे भी होती है वैसे अनुभव में आती है, अवलंबन नहीं लेते पर्याय का। सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म चर्चा तत्व चर्चा में उपयोग थोड़ा सूक्ष्म बनता है। उपयोग सूक्ष्म होता है तो स्वभाव भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्वभाव को ग्रहण करने के लिए उपयोग भी सूक्ष्म चाहिए ना, ऐसा तो इस तरह जो है वो सूक्ष्मता ज्ञान में उत्पन्न होवे वो स्वभाव ग्रहण में उपयोगी चीज है उतने बात। और पर रुचि उसमें घटती है, जिसको तीव्र पर रुचि होती है उसका उपयोग स्थूल हो जाता है, और आत्मरुचि होती है तो उपयोग सूक्ष्म होता है, तो आत्मरुचि में भी कारण बनता है ऐसा। रुचि तीव्र हो गए तो रुचि अनुयायी पुरुषार्थ होता है, इसलिए सीधा संबंध तो रुचि से है, फिर रुचि पर से पुरुषार्थ का संबंध लागू हो जाता है ऐसी बात। तो पर रुचि में रुचि होती है पर रुचि में उपयोग स्थूल हो जाता है और आत्मरुचि में उपयोग की सूक्ष्मता बढ़ती है। वेद ज्ञान कब होता है कि उपयोग सूक्ष्म होवे तो, क्योंकि अंतर में राग और ज्ञान एक मेक रूप से अनुभव गोचर हो रहा है तो दो बीच में निसंधि बना नहीं है, मैंने सांध है जैसे दो लादी के बीच में सीमेंट लगी हुई है ऐसे, ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। राग ज्ञेय है और उपयोग है वो ज्ञान है, और ज्ञान और ज्ञेय में अंतर नहीं भाषित होता क्योंकि ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिबिंब आ जाता है, इसलिए ज्ञान ही राग रूप प्रतिभाषित होता है। तो भीतर में राग और ज्ञान के बीच में जो सांध है वहां प्रज्ञा क्षणी डालनी है, तो रुचि पर में नहीं होवे, रुचि स्वरूप की होवे, तभी ऐसा भेद ज्ञान हो सकता है। इसलिए उपयोग की सूक्ष्मता स्व कार्य में अपेक्षित है। देखिए वचनामृत है ना, उसमें इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है उन्होंने। रात्रि के वांछन में वो इसका आधार लिया भी था। हाँ, 157 अंतिम पंक्ति है, 157 में वेद ज्ञान का विषय प्रज्ञा क्षीणी की चर्चा की है। अंतिम पंक्ति ऐसा है, अंतिम वचन, ऐसा नहीं होता कि पर में तीव्र रुचि हो और उपयोग अंतर में प्रज्ञा छेने का कार्य करे। इसलिए जिसको स्वभाव की महिमा होवे, पर पदार्थों के प्रति रस बुद्धि और सुख बुद्धि टूट गई हो, स्वभाव में ही रस आता हो, दूसरा सब निरस लगता हो, तभी अंतर के सूक्ष्म संधि ज्ञान में आती है। वरना तो अंदर में दो संधि है ऐसा पता ही नहीं चलता है। तो दो की संधि नहीं दिखे तो प्रज्ञा क्षणी डाले भी कहाँ। इसलिए अंतर भेद ज्ञान करने में उपयोग की सूक्ष्मता होनी चाहिए। और ये पर की सुख बुद्धि में रस बुद्धि में संभव नहीं है। आत्मरस और आत्मरुचि जिसको है उसको ही ज्ञान सूक्ष्म होता है, तीक्ष्ण होता है, उसी को ही काम बनता है। इसलिए वो बात बाहर में खिंचाव तो इसलिए है, कहीं भी अपनी सुख बुद्धि है या सुखाभास है, इसलिए तो बाहर के पदार्थ के प्रति आकर्षण होता है। बाहर का आकर्षण का कारण यही है। बाहर में सुख का खिंचाव होता है ज्ञान का, तो अंतर सुख के प्रति खिंचाव नहीं रहता है। दो विरुद्ध दिशा में तो खिंचाव होगा नहीं, इसलिए अंतर में नहीं आ सकता। इसका यही कारण है। इसलिए कहीं भी मेरा सुख बाहर में किसी भी पदार्थ में नहीं है, ऐसा दृढ़ हो जाना चाहिए। फिर भी ज्ञान में तो पर पदार्थ प्रतिभाषित होगा ही, तो ये सुख से शून्य है। जो भी पदार्थ ज्ञान में आता है वो तो जड़ पदार्थ आता है, रूपी पदार्थ आता है, पर जड़ है वो सुख से शून्य है। ऐसे सुख से शून्य है ऐसा भर प्रतिभाषित होवे तो खिंचाव नहीं होगा और रस नहीं आएगा। तो अंतर में ज्ञान सूक्ष्म होकर के अपना वेदन को ग्रहण कर पाएगा, वरना वेदन का पता नहीं चलेगा होते हुए भी। देखिए पहचान कहाँ से हुई, आत्मस्वरूप की पहचान लक्षण से हुई, ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभाव की पहचान हुई ना। वो लक्षण में कौन सा लक्षण था ज्ञान में? वेदन लक्षण था। ज्ञान मात्र से स्वसंवेदनात् सिद्धि ही, समय सार में परिशिष्ट में। तो पहचान भी वेदन लक्षण से आई और फिर लक्ष्य हो गया। पहचान होने पर क्या हुआ? आत्म स्वभाव लक्ष्य में आ गया। तो जिसको वेदन पूर्वक स्वभाव का लक्ष्य हुआ और स्वरूप लक्ष्य में रहने पर जिसको अपना वेदन का आविर्भाव होता है, क्या ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होता है, उसको ज्ञान विशेष का तिरोभाव हो करके प्रकट ज्ञान का वेदन होने लगता है। ये पुनर्विज्ञाता है हमेशा के। तो इस तरह ये ज्ञान साधन है, स्वानुभव में एकमात्र ज्ञान ही साधन है। नानम एकम साधनम, नानम एकम साधनम साधनादि विधौचितः। आत्मा को साधन की विधि अगर देखी जाए उतना ही नहीं, साधन की विधि की गहराई में जाए तो, क्योंकि मीमांसा शब्द लिया है वहां, तो ज्ञान एकमात्र ही साधन है। स्वानुभूति एक हेतुश्च, एक स्वानुभूति का यही कारण है। तस्मात् तत् परमं पदम, ये पंचाध्याय की 401 नंबर की गाथा है। सूत्रार्थ उपयोग में लब्ध, हाँ बराबर। जो उपयोग में, ज्ञान के उपयोग में जो ग्रहण होता है वो तो लब्ध में चला जाता है। श्रुत ज्ञान, कहीं भी श्रुत ज्ञान है वहां लब्ध उपयोग होता है, फिर वो सम्यक ज्ञान। शाम को चर्चा चली थी कि ये ग्रंथ में कई बातें, पत्रों का ग्रंथ होते हुए भी कितनी बातें ऐसी है कि जो शास्त्रों में नहीं मिलती है वो पत्रों में मिलती है, ये नमूना है। अभी शाम को इस चर्चा बात चली थी, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो शास्त्रों में ढूंढने जावे तो भी नहीं मिले, तो पत्रों में मिली है, क्योंकि मुमुक्षुओं को मार्गदर्शन दिया है। ये कृष्णदास भाई को पाठ पुरस्कार लिखा है, लेकिन बात बहुत काम की है, बहुत मतलब की बात है। और शास्त्र में ऐसी बातें सीधी प्राप्त नहीं होती, शास्त्र तो बहुत है फिर भी नहीं मिलती है, ये अनुभव में से निकालिया। हाँ बिल्कुल, अमृत ही समझो, अनंत जन्म मरण से बचाने वाला, एक मृत्यु से बचाने वाला नहीं, अनंत जन्म मरण से बचाने वाला अमृत है। हो सकती है उन्नति के क्रम में थोड़ा जितना दर्शन मोह हटता है, पहचान में तो अधिक मात्रा में दर्शन मोह हटा ही है, और दर्शन मोह हटा है और सत्पुरुष की पहचान हुई है तो उसकी महिमा आई, जो पहले पहचान बिना पहचान नहीं आई थी ऐसी आई, और इसका समागम करता है या समागम में अंतराय रहता है तो उसकी दशा चेष्टा, उसका स्मरण, उसका अवलोकन, उसका विचार, ये सब चलता है तो बहुमान और बढ़ता है, बहुमान बढ़ता है तो दर्शन में और नीचे जाता है, अनुभव घटता है। तो ये भाव भाषण के समीप आता है उसको ओग संज्ञा की निवृत्ति होने का अवकाश हो रहा है, उसको हम नहीं कहेंगे कि वो ओग संज्ञा में पड़ा है, लेकिन ओग संज्ञा निवृत्त करने के मार्ग में वो आगे बढ़ रहा है ऐसा। हाँ पॉजिटिव एंगल से उसको देखना चाहिए, जो पॉजिटिव साइड में अपना विकास कर रहा है उसको नेगेटिव साइड में देखने का हमारा जो दृष्टिकोण होगा तो हम गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ऐसी बात हो जाएगी। हाँ उनके लिए तो जिसने पहचाना है वो तो ज्ञान से पहचाना है, और पहचान में मूल्यांकन हुआ है वो ज्ञान में हुआ है, तो राग को राग तो इसके पीछे ज्ञान के पीछे घसीटता है। तो जहाँ ज्ञान की प्रधानता है वहां ज्ञान को देखना चाहिए, वहां राग को गौण कर देना चाहिए, इसलिए उसको ज्ञान की पर्याय कहना चाहिए। तो इनके लिए वो असत्संग नहीं है, इनका संग धार्मिक वृत्ति से होता है उसमें असत्संग नहीं है, लेकिन सांसारिक वृत्ति से जो भी संग है वो तो असत्संग ही है। तो जितना भी उदय के कारण से जो भी सचेत अचेत मिश्र जितने भी संयोग हैं उसमें हमारा अगर उदासीन भाव नहीं रहा तो प्रीति भक्ति रुचि हो ही जाएगी, अपेक्षा वृत्ति हो ही जाएगी। या तो अपेक्षा होती है या तो उपेक्षा होती है, अगर उपेक्षा नहीं हुई तो अपेक्षा तो रही भी है, अनादि से रही है, तो उस अपेक्षा वृत्ति से असत्संग होता है, और असत्संग है यही स्वरूप लक्ष्य को बाधक कारण बन जाता है। इसलिए संग के विषय में बहुत सावधानी और बहुत गंभीरता रखनी चाहिए। जैसे हम मुमुक्षु हैं तो भाई कहते हैं कि आपके संस्था में आपके मंडल में हैदराबाद में कितने मुमुक्षु हैं, उतने हैं, कुछ भी संख्या हो एक्स वाई जेड, इससे कोई मतलब नहीं है कितनी है, इससे ज्यादा है कम है, लेकिन संग करने में गंभीरता होनी चाहिए। क्या धार्मिक संग उसका ही किया जाता है कि जिसको परिभ्रमण से छूटने की भावना लगन हो उसका, संसार परिभ्रमण से या आत्मकल्याण की भावना नहीं हो वो भले ही मुमुक्षु कहलवाते हो लेकिन संग करने के लायक नहीं होते हैं। अच्छा है तो इनका संग करने में दोष नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा भी परिचय करने से पहले या संग रखने से पहले थोड़ा उसके अंतर में जाना चाहिए कि सिर्फ एक ही भावना और एक ही कारण से ही हमारा संग हो रहा है ना, पूछ लेना। देवचंद भाई को मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारा कोई अन्य हेतु तो नहीं ना, बाहर में ऐसा बोले लेकिन प्रसंग पे तो पता चलता है सबका कि नहीं पता चलता है। प्रसंग भी बहुत से पढ़ते हैं, बहुत से खड़े हो जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं चलता है कि जिसको आत्मकल्याण की एकमात्र भावना होती है उसकी वृत्ति उसी लाइन में काम करने लगती है तो उसमें पता तो चलता ही है। परिचय से तो पता सबका चलता है भाई, परिचय से पता नहीं चले वो बात तो मानने लायक नहीं है। अपरिचित का पता नहीं चलता है, लेकिन परिचित का पता नहीं चलता है ये बात कैसे मान सकते हैं। तो परिचय में आते तो परिचय से पता चल जाता है। उसमें लोक संज्ञा हो गई, लोक लज्जा में लोक संज्ञा हो गई, तो ये तो प्रतिबंधक कारण है ही। न लोक संज्ञा रखना है न लोक लज्जा रखना है, क्योंकि जिसकी लज्जा हम रखेंगे वो दुर्गति में से मुक्त करने के लिए हमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे, न करने को आएंगे भी। जैसे वो वाल्मीकि को क्या बोला, वाल्मीकि रामायण की क्या इतिहास है कि भी तुम लूटफाट करते हो, खून खराबा करते हो, मारते हो, तो नरक में जाओगे। नरक में तुमको यम है वो मारेगा। हाँ, तो वो कथा चलती है ना कि जमड़ा मार मार से, तो यम मारेगा, तो यम का मार से छुड़ाने के लिए वो तेरे परिवार जन आएंगे नहीं है, क्या बात है? वो लोग मदद नहीं करेंगे कि नहीं? वो तो वो कहाँ का कहाँ चले गए, अपने कर्मानुसार उनकी गति अलग हो जाएगी, तेरी गति अलग हो जाएगी, वो बचाने के लिए नहीं आएंगे। वैसे कोई बचाने के लिए किसी के शर्म रखने से कोई बचाने के लिए तो आएंगे नहीं वो लोग। अगर हम गलत रास्ता पे चलेंगे किसी के कारण से, तो जिसके कारण से हम गलत रास्ता पकड़ेंगे वो कोई बचाने के लिए आ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हमें हमारा हित करना है तो धार्मिक विषय में ये लोक लज्जा का विषय नहीं रहता, लोक लज्जा से दुर्गति होती है और तिर्यंच गति होती है, इसका फल तिर्यंच गति है। हाँ, कुसंग में ऐसा है कि हम जानते हैं कि ये अवगुणी है, क्या? और अवगुणी होते हुए भी हमें प्रीति रहती है, ये कुसंग है क्या? ऐसा तो संग करना वो तो बहुत भयंकर है, बहुत खराब है, उसको कुसंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रारंभ में ये विवेक है, क्योंकि संग बिना का तो है नहीं जीव। जब समाज के बीच में रहते हैं, परिवार जन के बीच में रहता है, तो बिना संग का तो है नहीं, असंग असंग रहने की तो स्थिति नहीं है संसार में। जब संग होता ही है तो इसमें विवेक करना ये बहुत आवश्यक है कि कुसंग नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसी बात आती है, जहर खाना अच्छा है लेकिन कुसंग में जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि जहर में एक दफे मृत्यु होती है और कुसंग से कि कुसंग से अनंत बार जन्म मरण हो जाएगा। इस बात अपने खुद के ये अविवेक है, विवेक नहीं है, ऐसी बात। उसको अच्छा लगाना है ना, हमारी भले दुर्गति हो गए लेकिन उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। सोलम जी ने दृष्टांत दिया है कि दारू पीना अच्छा नहीं है, दारू का व्यसन नहीं करना चाहिए आदमी को, ऐसा उपदेश देने से दारू बेचने वाले को धंधा में हानि पहुंचने का डर लगता है तो उसको बुरा लगता है कि ये तो हमारे धंधा के खिलाफ बात करता है, करना कि नहीं करना, उसको किसी को बुरा लगे ऐसा करना कि नहीं करना, इसको दुख पहुंचता है। तो एक सामान्य बुद्धि से भी अंग्रेज लोगों ने इतना विचार किया है कि वन कैन नॉट प्लीज ऑल, एक आदमी सभी को खुश रख सकता नहीं है, क्योंकि अवगुणी को अवगुण की रुचि है और सद्गुणी को सद्गुण की रुचि है। हम दोनों को कैसे ठीक रख सकते हैं, वो तो परस्पर विरुद्ध परिस्थिति में खड़े हैं, ऐसा बन ही नहीं सकता। हमें तो हमारा हमारी भलाई को का विचार हमें करना है। सही बात तो यह है कि हमें हमारी भलाई का विचार करना है। समझ में नहीं आई बात। मतलब तो ठीक है, नहीं जाना वो अच्छा है। प्रीति से, रुचि से, अपेक्षा से संग में नहीं जाना उतनी बात है, तो नहीं जाना वो तो है, वो तो सही बात है। सत्संग नहीं मिले तो असत्संग में या कुसंग में नहीं जाना, बस उसमें तो अच्छा ही है। इसके लिए तो शास्त्र स्वाध्याय है कि बाहर में सत्संग नहीं मिलता है तो क्या करें, तो शास्त्रों का संग करें, लेकिन असत्संग में और कुसंग में तो नहीं जाएं। ऐसी बात कैसे, दृष्टांत बताइए। नहीं, वो तो चर्चा चली थी कि क्या अपने को गाली देगा या अपने पिता को गाली देगा तो ऐसा रहता है तटस्थ। एक दफे अपमान हो जाता है तो जिंदगी भर नहीं भूलता है, हैं? इससे तो ज्यादा प्रेम हो रहता, अनुराग वहां रहता है, वहां तो ऐसा नहीं बनता है। अगर अनुराग नहीं होता है तो ऐसा बनता है। अब तो हाँ, तो उनका अनुराग है, जिसका बचाव करता है उसका अनुराग है, जिसका अनुराग है वो सही कार्य तो करेगा, उसमें क्या नई बात हुई। जैसा परिणाम है वैसे पूर्व भाव याद आता है, तो इसका फायदा यह है, अगर फायदा उठाना चाहें तो, कि आत्मा शाश्वत है ऐसा ज्ञान इससे होता है, मरता नहीं है। क्योंकि पूर्व भव में मैं था, वो का भव में अभी हूं, मरा नहीं मैं। आत्मा का मृत्यु नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा शाश्वत है ऐसा ज्ञान उससे हो सकता है, करना चाहे तो। सभी को होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। जाति स्मरण वाले बहुत से लोग हैं, आज भी होते हैं, सभी संप्रदाय में हो सकते हैं, लेकिन सबको ऐसा राइट एंगल नहीं होता है तो शाश्वतता को समझ सके। कोई नियम नहीं है इसका, इसका कोई सैद्धांतिक कोई नियम नहीं है। ये याददाश्त चीज ही ऐसी है, या स्मृति ज्ञान का पंगुपना या अशक्ति ऐसी है कि वो कभी याद आवे कभी नहीं भी याद आवे। जैसे अपन विचार करें कि हमको 10 साल पहले की कोई बात याद आ सकती है कि इनके घर गए थे, उन्होंने ऐसा हमको खिलाया था, या ऐसा हमारा सम्मान किया था, या ऐसा हमारा अपमान किया था, लेकिन कल कौन सा सब्जी खाया था वो भूल जाते हैं कभी, कि कल हमारे घर में कौन सी सब्जी बनी थी और हमने क्या खाया था। कल की बात भूल सकते हैं, 10 साल पहले की याद आ सकती है। ये एक विचित्र परिस्थिति है स्मरण शक्ति की, बहुत विचित्रता इसमें होती है। सब बात याद आवे वो भी जरूरी नहीं, कौन सी याद आवे और कौन सी भूल जावे, और याद आई हुई भी कौन सी भूल जावे, कोई इसका ठिकाना नहीं है। हाँ हमारे भावनगर में ही है वो राजुल है ना, अभी तो इनकी शादी हो गई है, अभी तो इनकी शादी हो गई है, ये अहमदाबाद में इसका ससुराल है, लेकिन आती है अभी घर इनका यहाँ है, इनकी मदर वहाँ ठहरती है भावना। हमने बातचीत कभी नहीं किया है, बहन से कोई बात नहीं किया है, गुरुदेव से सुना था, हमने कोई पर्सनल बातचीत नहीं किया, कभी कुछ नहीं पूछा इनको कभी, सिर्फ वो मंदिर में आती जाती है, इसलिए जानता है कि जिसकी बात जाति स्मरण की होती थी वो लड़की वो है, हैं? हाँ हाँ वही वो है, भावनगर में ठहरते हैं इसका परिवार, को भी बातचीत होने का प्रसंग नहीं बना है। किसको? इनको लाभ हुआ तो हम बात करें तो पता चले ना, हमने तो इस लड़की से कभी बात ही नहीं किया, हमको क्या पता चले, कोई नियम नहीं है कि फायदा होवेगी। अगर आत्मा का शाश्वतपणा प्रतीति में आवे तो फायदा होवे, पर ऐसी प्रतीति नहीं आवे तो फायदा नहीं होवे। बहुतों को जाति स्मरण होता है, अब तक वो क्या अपने तत्व चर्चा में वो ऐसी बातों की कोई प्रयोजन नहीं है, अपने तो कोई अपना आत्म कल्याण हुए ऐसी चर्चा करें, दुनिया भर की चर्चा करेंगे तो बहुत सी बातें हैं, क्या फायदा है, हमें क्या फायदा है इससे। हाँ कल्पना करें तो प्रयोजन भी प्रयोजनभूत विषय में शास्त्र में जैसी बात कही है इससे अन्यथा हमारे समझ हो जाए, कल्पना हो जाए तो वो ग्रहित मिथ्यात्व होता है। एक तो आत्मस्वरूप के विषय में और एक आत्मस्वरूप की प्राप्ति का जो उपाय है इस विषय में, दो बहुत प्रयोजनभूत विषय है। ये दो विषय में अन्यथा समझ बुद्धिपूर्वक हो जाए उसको कल्पना कहते हैं या ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, और दर्शन मोह की तीव्रता होने पर ही ऐसा होता है, वरना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र है वो तो दर्शन मोह घटाने का निमित्त है। वास्तव में शास्त्र में जो निमित्त है, निमित्त पड़ा है, वो तो दर्शन मोह को घटाने का होता है, लेकिन यहाँ भी दर्शन मोह तीव्र हो गया तो समझ लेना कि अपने जो मिथ्यात्व है इसका जोर बढ़ गया है, भाव में अपना मिथ्यात्व भाव का जोर बढ़ गया है, इसलिए हमें कल्पना होती है या अन्यथा ग्रहण हो जाता है। हाँ वो तो स्थूल मिथ्यात्व है, इनका प्रश्न वो नहीं था, इनका प्रश्न तो शास्त्र संबंधित था, लेकिन देव गुरु शास्त्र है वही सत्ता होना चाहिए, वितरागी होना चाहिए, वितरागी देव गुरु शास्त्र के अलावा दूसरे देव गुरु शास्त्र के विषय में श्रद्धा या मान्यता या स्वीकारपणा नहीं होना चाहिए। हाँ सीधी बात तो स्थूल ग्रहित मिथ्यात्व है, वो भी ग्रहित है, वो कुछ मानता नहीं है, पूरी नहीं मानता है, अरे हजार में से 999 मानता है, एक को नहीं मानता है, वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है, कुछ का क्या बात है। श्री गुरु की सभी बात शिरोधार्य करनी चाहिए, माननी चाहिए, क्या शिरोधार्य करनी चाहिए, तो एक भी बात का हमें विरोध आता है या सम्मत नहीं करते हैं, ये हमारा स्वच्छंद है, तो उसमें तो ग्रहित मिथ्यात्व हो ही जाता है, उसको माना ही नहीं। ज्ञानी को ज्ञानी या गुरु को गुरु माना ही नहीं है, और दसों को भी नहीं मानता है, ग्रहित मिथ्यात्व है। या 1000 दफे तो जिन मंदिर में गया और 1001 की बार अम्बा जी का मंदिर में गया, बात खत्म, पूरी हो गई सब। हाँ नहीं, हाँ निर्णय कर बैठता है, वो उतावल है। जहाँ तक भाव भाषण नहीं हुए, जिज्ञासा में रहना चाहिए, खोज में रहना चाहिए, निर्णय नहीं कर बैठना चाहिए। देखिए संसार के कार्य में तो हम बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि पता चलता है कि गलती हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, रहते कि नहीं। जैसे कोई हमारे दुकान पर अप टू डेट आदमी आया, दिखाव में, चेहरा से, कपड़े से, बातचीत से ऐसा नहीं लगे कि कोई ठग है, लगे कि कोई अच्छा ग्राहक आ गया है और वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, 10-20-25-50 हज़ार का माल खरीदने की बात करता है। दिखता भी है कि ऐसा खरीद करने की कैपेसिटी वाला आदमी देखता है, लेकिन पेमेंट के वक्त वो ऐसा कहेगा कि मैं कैश नहीं लाया, चेकबुक है मेरे पास, आपको चेक लिख देता हूँ, ठीक है क्या? क्या करोगे आप? नहीं देते क्यों? पहचान नहीं है तो उसके कपड़े से, बातचीत से, चेहरे मोहरे से निर्णय क्यों करने नहीं किया? निर्णय के तो कुछ तो निमित्त मिले आपको, क्योंकि कपड़े भी बिल्कुल कीमती कपड़े पहने हुए हैं, फालतू कपड़े, मामूली कपड़े नहीं पहना है। अरे बूट चंपल भी कॉस्टली पहना है, दिखता है कि उसका बूट 500 रुपया जोड़ी का होगा कम से कम, और बातचीत सब ठीक लगता है, फिर भी माल क्यों नहीं देते? निर्णय क्यों कर नहीं कर लेते? माल उधार देने का या चेक का स्वीकार करने का निर्णय क्यों नहीं करते? कि अगर निर्णय में गलती हो गई तो सब जाएगा, पैसा, चेक वापस आ जाएगा। तो प्रयोजन जहां होता है वहां तो पूरी चौकसाई करते कि नहीं करते, कि अधूरी करते, कि पूरी तसल्ली नहीं होती तो हम कहते हैं, देखिए भाई साहब बुरा मत मानिए, आप सज्जन होंगे, पैसे वाले होंगे, क्या 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 बात बोलेंगे, उसको ऊंचे ऊपर बैठा देंगे, लेकिन माफ कीजिए मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता, और अनजाना और अंधा सरीखा होता है, इसलिए आप मुझे अंधा कहो या अनजाना कहो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहचान होगी तब तो माल दूंगा मैं, क्या करेंगे, ऐसा होता है। हाँ उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसमें 2 पैसा का नुकसान है, वो तो पूरा है, अधूरा नुकसान सम्मत करता है, पूरा नहीं करेगा। शास्त्र दिखाता है, सत्पुरुष भी दिखाता है, 2 मार्ग दिखाने वाले हैं। जहां कल्पना होने की संभावना है, कल्पना होने का 3 कारण कृपालु देव ने बताया कि या तो लोक संगना हमें होगी तो कल्पना हो जाएगी, या तो ओग संज्ञा होगी तो कल्पना हो जाएगी, या तो हम असत्संग में रहते होंगे तो कल्पना हो जाएगी। हाँ, हो सकता है, बुद्धि पूर्वक विपर्यास होता है। ये जो अन्य मति हुए तो अभी तो काल बहुत पंचम काल है हुंडाव सर्पिणी का, लेकिन भगवान ऋषभदेव स्वामी का तो काल है, वो तो सतयुग का प्रारंभ था, फिर तो चौथा काल भी उतरता हुआ, फिर पंचम आया, डाउनवर्ड ट्रेन है ये काल का। तो प्रारंभ में तो उतना काल खराब नहीं था, लेकिन समोह शरण में 383 गृहित मिथ्यात्व का प्रारंभ हुआ, 383 प्रकार का वहां से चालू हुआ इस काल में। अभी जो अन्य मत चल रहा है अभी तो सैकड़ों है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन 383 तो पैदा समोह शरण में हुआ था, तो वो भी ऋषभदेव स्वामी के, महावीर स्वामी के नहीं, ये हमारा इतिहास बोलता है। इस चौबीसी का जो इतिहास है, वर्तमान चौबीसी का इतिहास वो बोलता है, हमारे पुराण ये बात बोलता है। साक्षात सर्वज्ञ के सामने, आप तो शास्त्र की बात करते हो, लेकिन वहां तो तीर्थंकर परमात्मा विराजमान थे और इनकी दिव्य धनी चल रही थी, उसमें से ग्रहित हुआ। और नर्क गति चालू नहीं हुई थी, वो चालू होगी, वहां सातवीं नर्क में गए वो। अग्रहित मैंने अबुद्धिपूर्वक का मिथ्यात्व, बुद्धिपूर्वक नहीं। जैसे हमें परम सुख लगता है संयोग में कि अनुकूलता में, बिना विचार भी सुख लगता है, जैसे गर्मी पड़ती है तो एक सामान्य जंतु है वो भी तड़का में से छाए में चला जाएगा, तो बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, मन नहीं है उसके पास, ये चींटी होती है, मकोड़ा होता है, क्या होता है, तो तड़का में से छाए में चल, धूप में से छाए में चला जाता है ना, तो उसको तो विचार करने की शक्ति नहीं है, मन ही नहीं है, मन वाला प्राणी नहीं है। लेकिन यहाँ दुख है, यहाँ सुख है, ये बिना विचार वैसा होता है, उसको अबुद्धिपूर्वक का मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ, अनादि से भी है, और इसमें वैचारिक कोई बात नहीं है। जैसे पुण्य से धर्म मानते हैं विचार पूर्वक, तो ये वो ग्रहित हो गया, भले ही देवगुरु शास्त्र जैनियों का होता है, लेकिन विचार पूर्वक मान लिया। देहात्म बुद्धि है वो मिथ्यात्व है, लेकिन वो अग्रहित है। एक इंद्री में भी देहात्म बुद्धि था, अभी पंचेंद्री हुआ तो भी देहात्म बुद्धि है, तो वो अग्रहित मिथ्यात्व है। लेकिन ऐसा पुण्य भाव हुआ फिर भी मुझे मुक्ति का कारण है तो आश्रव बंध का कारण, उससे पुण्य आश्रव होता है और पुण्य बंध होता है तत्व दृष्टि से, और माने के समर निर्णय होता है। तो बुद्धि पूर्वक जो भूल किया वो ग्रहित का हो गया, उसमें ग्रहित मिथ्या तो हो गया, बुद्धि लगाता है और मिथ्या मैंने कल्पना करता है, झूठे झूठा उपाय करता है, तो वो ग्रहित में जाता है, ऐसी बात है। दोनों चला जाता है, मिथ्यात्व नाम जिसका कहे ऐसा कोई मिथ्यात्व नहीं रहे, इसका नाम सम्यक्त्व है। ग्रहित मिथ्यात्व मतलब तीव्र मिथ्या दर्शन को की स्थिति को ग्रहित मिथ्यात्व वाली होती है, और मंद मिथ्यात्व में अग्रहित होता है, और सम्यक्त्व में मिथ्यात्व का अभाव होता है, नाश हो जाता है, उसी को सम्यक्त्व कहते हैं। हाँ, ग्रहित पहले जाता है, क्योंकि तीव्रता पहले मिटती है फिर मंदता मिटती है। रोग में भी क्या है, तीव्र रोग है तो पहले मंद होता है फिर नाश होता है, तंदुरुस्ती जाती है, ये भी एक रोग है। नहीं, पहले ग्रहित छूटता है, ग्रहित होता है तो, सबको ग्रहित नहीं भी होता है, एक ग्रहित ही रहता है, ऐसा भी लगता है, दोनों हुए तो पहले पहले ग्रहित चला जाता है फिर अग्रहित।